लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि निकट पूर्व में वार्ता, साक्षात्कार और पुनर्मिलन की भावना उभरे, जहां विविध धार्मिक समुदाय एक साथ मिलकर जीवन यापन करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस की थाईलैंड एवं जापान में प्रेरित यात्रा का वृत्तांत, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेट्रस महागिरजा घर के प्रांगण में एकत्रित हजारों विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों को थाईलैंड एवं जापान में अपनी प्रेरित यात्रा का वृत्तांत बतलाते हुए संबोधित किया। उन्होंने कहा,
कारी फ्रातेल्ली ए सोरेल्ले, बुंजोर्नो। येरी सोनो रिटोर्नातो दल व्याजो अपोस्टोलिको इन थाईलैंडिया ए जापान।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। कल ही मैं थाईलैंड और जापान की प्रेरित यात्रा से वापस लौटा, जो मेरे लिए एक महान वरदान है, जिसके लिए मैं प्रभु के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं दोनों देशों के अधिकारियों एवं धर्मदर्शियों के प्रति पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया और मेरी बड़ी खातिरदारी की। सबसे बढ़कर मैं थाई और जापानी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इस मुलाकात ने इन लोगों के प्रति मेरे स्नेह एवं सामीप्य को बढ़ा दिया है। ईश्वर उन्हें प्रचुर समृद्धि एवं शांति की आशीष प्रदान करें। संत पापा ने कहा, थाईलैंड एक प्राचीन देश है जो प्रभावशाली ढंग से आधुनिक हो गया है। राजा, प्रधानमंत्री एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करते हुए मैंने थाई लोगों की धनी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं देश के विभिन्न घटकों के बीच सौहार्द लाने के प्रति समर्पण को प्रोत्साहन दिया, ताकि सभी के हित के लिए आर्थिक विकास किया जा सके एवं शोषण के संकट को दूर किया जा सके, खासकर महिलाओं एवं बच्चों पर। बौद्ध धर्म यहाँ के लोगों के जीवन एवं इतिहास का प्रमुख हिस्सा है। अतः मैंने बौद्ध महामुनि से मुलाकात की और मेरे पूर्वाधिकारियों द्वारा शुरू किए गए रास्ते पर आगे कदम बढ़ाया, ताकि विश्व में सहानुभूति एवं भाईचारा बढ़ सके। इस अर्थ में यह अंतर्धार्मिक वार्ता एवं ख्रिस्ते एकतावर्धक वार्ता के दृष्टिकोण से अत्यंत प्रतीकात्मक रहा। थाईलैंड की कलीसिया रोगियों एवं वंचित लोगों की सेवा के माध्यम से साक्ष्य दे रही है। उनमें से एक संत लुइस अस्पताल का दौरा मैंने किया, जहां मैंने वहां के कर्मचारियों एवं कुछ रोगियों से मुलाकात की। उसके बाद मैंने पुरोहितों, धर्म सामाजों, धर्मदर्शों और जेसुइट भाइयों को विशेष रूप से समय दिया। बैंकॉक में मैंने राष्ट्रीय स्टेडियम में ईश्वर की प्रजा के साथ ख्रिस्त्याग अर्पित किया। तत्पश्चात महागिरजाघर में युवाओं के साथ मुलाकात की। वहां हमने महसूस किया कि यीशु ख्रिस्त द्वारा नए परिवार का निर्माण किया गया है, जहां थाई लोगों के चेहरे और आवाज भी हैं। उसके बाद मैं जापान चला गया। मेरे टोक्यो स्थित प्रेरित राजदूतावास पहुंचने पर देश के धर्मदर्शियों ने मेरा स्वागत किया, जिनके साथ हमने शीघ्र छोटी कलीसिया के धर्मदर्श होने की चुनौतियों और जीवन जल यीशु के सुसमाचार को फैलाने की बातों को साझा किया। जापान में मेरी प्रेरित यात्रा का आदर्श वाक्य था, हर जीवन की रक्षा, जो एक ऐसा देश है जिसमें परमाणु बम हमले के घाव अंकित हैं और जो पूरे विश्व के लिए जीवन और शांति के मौलिक अधिकार का प्रवक्ता है। नागासाकी और हिरोशिमा में मैंने प्रार्थना की तथा कुछ पीड़ितों एवं उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। मैंने परमाणु हथियारों की निंदा की तथा बम बनाने एवं बेचने वालों के द्वारा शांति के बारे बात करने के पाखंड को दोहराया। इस बड़े संकट के बाद जापान ने जीवन के लिए संघर्ष करने की एक असाधारण क्षमता को प्रकट किया है। उसने हाल की घटनाओं जैसे 2011 में भूकंप, सुनामी और परमाणु दुर्घटना के बावजूद ऐसा कर पाया है। संत पापा ने जीवन की रक्षा पर बल देते हुए कहा, जीवन की रक्षा करने के लिए उससे प्रेम करना आवश्यक है। आज विकसित देशों में गंभीर खतरा है जीवन के अर्थ को खो देना। आर्थिक स्रोत काफी नहीं है, तकनीकी भी पर्याप्त नहीं है। इसके लिए पिता ईश्वर के प्रेम की आवश्यकता है जिसको यीशु ख्रिस्त ने प्रदान किया है और करते हैं। प्रेम जिसने शहीदों को गवाही देने के लिए प्रेरित किया, उदाहरण के लिए नागासाकी के संत पॉल मिकी एवं उनके 25 साथी। इसी प्रेम ने धन्य जुस्तो ताकायामा ओकोन एवं कई अन्य स्त्रियों एवं पुरुषों को बल प्रदान किया जिन्होंने अत्याचार के दौरान विश्वास को सुरक्षित रखा। भावना की शून्यता के पहले शिकार है युवा, अतः टोक्यो में एक मुलाकात का अवसर उन्हें भी दिया गया। मैंने उनके सवालों, उनकी आकांक्षाओं को सुना और उन्हें प्रोत्साहन दिया कि हर प्रकार की बदमाशी का एक साथ विरोध किया जाए और भय पर विजय पाया जाए तथा प्रार्थना एवं पड़ोसी की मदद द्वारा ईश्वर के प्रेम के लिए खुला होते हुए एक दूसरे के करीब आया जाए। युवाओं के दूसरे दल से संत पापा ने सोफिया विश्वविद्यालय में वहां के शैक्षणिक समुदाय से मुलाकात की। उन्होंने कहा, हर कैथोलिक स्कूल की तरह यह विश्वविद्यालय भी जापान में अत्यंत सराहनीय है। तब टोक्यो में मैंने सम्राट नारुहितो से मुलाकात करने का सुंदर अवसर प्राप्त किया जिसमें मैंने अपने आभार की अभिव्यक्ति को नवीकृत किया। साथ ही साथ मैंने देश के वरिष्ठ अधिकारियों एवं राजनयिकों से मुलाकात की। मैंने वहां मुलाकात एवं वार्ता तथा प्रज्ञा एवं क्षितिज को विस्तृत करने जैसी विशेषताओं की उम्मीद जताई। संत पापा ने कहा कि अपने धार्मिक एवं नैतिक मूल्य के प्रति वफादार रहने तथा सुसमाचार के संदेश के प्रति खुला होने के द्वारा जापान अधिक न्यायपूर्ण एवं शांति में विश्व तथा मनुष्यों एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य के लिए एक अग्रणी देश हो सकता है। तब संत पापा ने विश्वासियों का आह्वान करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, affidiamo alla bontà e alla provvidenza di Dio i popoli della Thailandia e del Giappone. Grazie.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, आइए हम थाईलैंड एवं जापान के लोगों को ईश्वर की अच्छाई एवं कृपा को समर्पित करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने अपना वक्तव्य समाप्त किया और विश्व के विभिन्न देशों से आए सभी तीर्थयात्रियों एवं विश्वासियों का अभिवादन किया। खासकर उन्होंने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एवं अमेरिका के तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। तत्पश्चात उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को यीशु ख्रिस्त के आनंद एवं शांति की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Riempia il vostro cuore di speranza e vi trovi gioiosi nel servizio dei più bisognosi.
त्राही के समय पराजय में हर समय त्राही त्राही के समय पराजय में हर समय यीशु जी का नाम ही प्रेम दान है अभय यीशु जी का नाम ही प्रेम दान है अभय त्राही त्राही के समय शहद से भी अधिक मधुर है ईशवाणी मोहनी, रवि किरण सुहानी ऐसी ईशवाणी, रवि किरण सुहानी ऐसी ईशवाणी, आओ मिलके हम सुने ईशवाणी हर समय, आओ मिलके हम सुने ईशवाणी हर समय। त्राही त्राही के समय पराजय में हर समय, त्राही त्राही के समय पराजय में हर समय, यीशु जी का नाम ही प्रेम दान है अभय।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। जापान से वापस रोम आते समय विमान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। संत पापा फ्रांसिस थाईलैंड और जापान की अपनी 7 दिवसीय प्रेरितिक यात्रा समाप्त कर 26 नवंबर को हनेदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रोम वापसी के लिए यात्रा शुरू किया। विमान में संत पापा ने सभी पत्रकारों का अभिवादन कर उनके कामों की सराहना करते हुए उनके साथ रहने और उनका साथ देने के लिए धन्यवाद दिया। कैथलिक सिम्बूम के पत्रकार नागासाकी के फादर मोकोतो ने संत पापा से नागासाकी और हिरोशिमा के अनुभव के बारे में पूछा, साथ ही पूर्वी कलीसिया और समाज द्वारा पश्चिम देशों के लिए क्या संदेश दे सकता है। संत पापा ने कहा, प्रकाश पूर्व से आता है, विलासिता उपभोक्तावाद पश्चिम से आते हैं। पूर्वी ज्ञान न केवल ज्ञान का बल्कि समय का और चिंतन का ज्ञान है। चिंतन करने के लिए सीखना हमारे पश्चिमी समाज के लिए बहुत मददगार होगा। संत पापा ने अपनी व्यक्तिगत राय बताते हुए कहा कि पश्चिम में कुछ सुंदर काव्यात्मक बातें हैं, लेकिन पूर्व इससे ऊपर है। पूरब आँखों से उन चीजों को देखने में सक्षम है जो उससे आगे जाती हैं। पूर्वी ऋषियों के ज्ञान को पढ़कर उपवास तपस्या के माध्यम से और वैयक्तिक पूर्णता की खोज में पश्चिमी देशों को थोड़ा रुक कर और ज्ञान के लिए समय देने से अच्छा होगा। नागासाकी और हिरोशिमा के दौरे के बारे में संत पापा ने कहा, नागासाकी और हिरोशिमा दोनों ने परमाणु बम का सामना किया, लेकिन एक अंतर है, नागासाकी न केवल परमाणु बम का अनुभव किया बल्कि ख्रिस्तीय उत्पीड़न का भी। नागासाकी में ख्रिस्तीय जड़े हैं, हालांकि पूरे जापान में ख्रिस्तियों पर उत्पीड़न हो रहा था, लेकिन नागासाकी में यह बहुत मजबूत था। राजदूतावास के सचिव ने उस समय के वांटेड संकेत का एक लकड़ी का तख्ता दिया, यदि कोई एक ख्रिस्तीय को खोज निकाले तो उसे इनाम मिलेगा और अगर एक पुरोहित का पता बताए तो उसे और भी बड़ा इनाम मिलेगा। संत पापा ने कहा कि हिरोशिमा एक वास्तविक मानव क्रूरता पर धर्म शिक्षा थी। संत पापा समय की कमी के कारण हिरोशिमा संग्रहालय नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने बताया कि संग्रहालय में राष्ट्राध्यक्षों के पत्र हैं, जिनमें सेना के जनरल बताते हैं कि अधिक से अधिक आपदा का उत्पादन कैसे किया जा सकता है। यह अनुभव संत पापा के लिए बहुत अधिक मार्मिक था और वहां उन्होंने फिर से कहा कि परमाणु हथियारों का उपयोग अनैतिक है, इसे कैथलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा में जोड़ा जाना चाहिए। न केवल परमाणु हथियारों का उपयोग बल्कि उन्हें पास रखना भी अनैतिक है। एक व्यक्ति के पागलपन से या कुछ सरकारी नेता के पागलपन और गलत निर्णय से पूरी मानवता को नष्ट कर सकता है। परम धर्म पीठ द्वारा लंदन के केंद्र में करोड़ों यूरो की संपत्ति खरीदी गई, खासकर इसमें संत पेत्रुस की उदारता के यूरो को खर्च किया गया है। इस मामले पर संत पापा की प्रतिक्रिया पूछी गई। संत पापा ने कहा कि रुपये संदूक में बंद करने के लिए नहीं होते, इसका सही तरह से प्रयोग करना चाहिए जो सुरक्षित और नैतिक हो। संत पेत्रुस की उदारता के यूरो को हथियार बनाने वाले फैक्ट्री में खर्च नहीं किया जा सकता। संत पापा ने कहा, यदि आप एक निवेश करते हैं और वर्षों तक पूंजी को नहीं छूते हैं तो यह सही नहीं है। संत पेत्रुस के रुपये एक साल के भीतर खर्च किया जाना चाहिए, जब तक कि अगला संग्रह दुनिया भर से नहीं आ जाता। संत पापा ने कहा, संत पेत्रुस के यूरो से आप एक संपत्ति खरीद सकते हैं, उसे किराए पर दे सकते हैं या फिर उसे बेच सकते हैं, लेकिन हमेशा सुरक्षित रूप से और लोगों की भलाई को देखते हुए पेत्रुस के रुपये का सही उपयोग करना चाहिए। संत पापा ने स्वीकार किया कि वाटिकन में जो कुछ हुआ वह एक कलंक था। उन्होंने ऐसे काम किए जो पारदर्शी नहीं थे। यह आरोप बाहर से नहीं आया। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें द्वारा आर्थिक सुधार के तहत आंतरिक लेखा परीक्षक ने इस बात को उठाई थी। लंदन की संपत्ति के मामले में वाटिकन न्याय प्रणाली द्वारा जांच जारी है। 5 कार्यालयों की तलाशी ली गई। आज यद्यपि निर्दोषिता का अनुमान है, परंतु यह स्पष्ट है कि पूंजी का अच्छी तरह से प्रयोग नहीं किया गया था। एक महीने के अंदर 5 लोगों पर कार्यवाही शुरू हो जाएगी जिन्हें निलंबित कर दिया गया था। खोज के परिणाम दिखाएंगे कि वे दोषी हैं या नहीं। वाटिकन के अंदर इन चीजों का होना अच्छा नहीं है, लेकिन वे आंतरिक तंत्र द्वारा हल किए जा रहे हैं। वाटिकन का नियंत्रण तंत्र अच्छी तरह से काम कर रहा है। संत पापा फ्रांसिस का विमान मंगलवार शाम को रोम के फ्यूमिचिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। हवाई अड्डे से वाटिकन लौटने से पहले संत पापा संत मरिया मेजर गिरजाघर गए और अपनी प्रेरितिक यात्रा के सफल समापन के लिए धन्यवाद दिया। उसके बाद संत पापा फ्रांसिस वाटिकन अपने निवास स्थान आए। और मंगलवार सुबह तड़के अल्बानिया में आए भूकंप से बचे लोगों को संत पापा फ्रांसिस ने अपनी हार्दिक संवेदना भेजी। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो परोलिन ने अल्बानिया के राष्ट्रपति इलीर मेटा को संबोधित करते हुए एक टेलीग्राम में कहा कि संत पापा फ्रांसिस भूकंप आपदा में मारे गए लोगों की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और घायलों तथा सभी प्रभावित लोगों को प्रार्थना में उनकी निकटता का आश्वासन देते हैं। संत पापा फ्रांसिस प्रयासरत आपातकालीन राहत कर्मियों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। अल्बानिया में शक्तिशाली भूकंप आने से कम 21 लोगों की मौत हो गई और करीब 600 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अल्बानिया में 6.4 तीव्रता का भूकंप दक्षिणी बाल्कन में भी महसूस किया गया। इसके कई झटके भी आए। उधर भारत में हिंदू धार्मिक नेता स्वामी लक्ष्मानंद की हत्या के झूठे आरोप में जेल में बंद 7 में से 4 मासूमों को भारत के सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। 2 को इस साल के शुरू में ही जमानत मिल गई थी। एसी माइकल ने 26 नवंबर को बताया कि एलायंस डिफेंडिंग फ्रीडम ADF की भारतीय यूनिट ने कंधमाल के साथ मासूमों की कानूनी लड़ाई में मदद की है। ADF एक ऐसा संगठन है जो ख्रिस्तियों के अधिकारों का बचाव करता, मौलिक स्वतंत्रता और मानव गरिमा की रक्षा करता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।